तुमचं पूर्ण नाव?
माझं नाव सौ सुजाता सुनील म्हात्रे, साधन व्यक्ती, BRC वसई, पंचायत समिती वसई.
आणि हे शाळा कुठली आहे?
ही शाळा जिल्हा परिषद शाळा भोयेपाडा.
भोयेपाडा. आणि तुमचा शिक्षणही बरोबर सांगा ना.
माझं शिक्षण मी MA BEd आहे. हिंदी विषयात मी MA केलेलं आहे. BEd सुद्धा मी हिंदी आणि हिस्ट्री या दोन विषयांमध्ये केलेलं आहे.
आणि तुमचा अनुभव सांगा ॲज अ टीचर. कधी तुम्ही जॉईन केला शाळा?
16 नोव्हेंबर 2006 या जॉबमध्ये जॉईन झाली. आत्ता 16 नोव्हेंबरला आम्हाला 16 वर्ष पूर्ण झाली.
16 वर्ष पूर्ण झालं. पहिल्यांदा तुम्ही कुठल्या शाळेत होतो?
पहिल्यांदा आम्ही शाळेत नाही सर, आम्ही तालुक्याला काम करतो.
तालुक्याला.
प्रत्येक आपल्या जिल्ह्यामध्ये 8 तालुके आहेत ब्लॉक, आणि प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक BRC आहे.
एक BRC.
ॲज अ BRC प्रत्येक BRC मध्ये 6 रिसोर्स पर्सन आहेत ॲज अ सब्जेक्ट वाईज.
ऑल्सो
मराठी, मॅथ्स.
ओके.
आय एम ऑल्सो सब्जेक्ट
एक्सपर्ट. कौनसा सब्जेक्ट है आपका?
मेरा हिंदी है.
हिंदी है.
मराठी चले?
हाँ, आप हिंदी में फ्लुएंट बोल सकते हो ना?
हाँ, तो फिर ठीक है.
हाँ ठीक है, फिर हम हिंदी में बात. आई थॉट आप महाराष्ट्रियन, सो लो लैंग्वेज थोड़ा. हाँ तो
मेरा सब्जेक्ट ही हिंदी है. मगर कैसा रहता है ये जो 6 पर्सन है ना, वो कैसे रहते हैं? मराठी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश. तो हिंदी उसमें नहीं आता
है, तो
लैंग्वेज में ही गिने जाते हैं.
अच्छा.
एज अ मराठी, एज अ हिंदी.
तो आपका एजुकेशन कंप्लीट जब हुआ, सबसे पहला जॉब कौन सा था आपका?
टीचर का.
टीचर का. कौन सी स्कूल थी वो?
नाला सोपारा में सरस्वती विद्या मंदिर.
अच्छा.
मैं 8 to 10 स्टैंडर्ड को केवल हिंदी पढ़ाती थी. उसमें मैंने 2.5 साल
स्पेंड किया.
और ये जो मेरा अभी जॉब है, ये वैकेंसी आई थी पेपर में
जी.
और उसके लिए MA BEd कम की शर्त रखी थी. और एज अ टीचर 2.5 साल का एक्सपीरियंस. तो पहले हमारा 75 का रिटर्न हुआ, बाद में 25 ओरल और बाद में जॉइनिंग.
अच्छा. पहला जॉब आपने कौन से साल में ज्वाइन किया था?
2006
में. कितने साल काम किया आपने उधर नाला सोपारा में?
नाला सोपारा नहीं सर, नाला सोपारा एज अ टीचर.
टीचर. ओके.
टीचर मैंने 2.5 साल किया.
2.5 साल. फिर
मैं अभी जो मैं रिसोर्स पर्सन की पोस्ट पे हूँ, तो ये मैंने 16 नवंबर 2006 को ज्वाइन किया
एज अ रिसोर्स पर्सन. ओके.
तो मैंने पालघर ब्लॉक में 2006 से 2013 तक की.
अच्छा.
2013 में मेरी बदली हो गई इधर वसई ब्लॉक में.
अच्छा.
तो अभी इधर भी मुझे 10 साल होने को.
10 साल. मैम, जो बदली होता है ना, वो ऊपर से ही ऑर्डर आता है तो बदली, हम खुद से चॉइस नहीं कर सकते.
नहीं कर सकते. इसमें कैसा रहता है सर, जब हम जॉइनिंग हुए थे ना, जब हमारी जॉइनिंग हुई थी ना, तो पहले हम एक ही ब्लॉक में 14 रिसर्च पर्सन थे.
14.
हाँ. लेकिन कैसा हुआ, 2012 में थोड़ा सा आराखड़ा चेंज किया स्टेट का, और ऐसा डिमांड आ गया कि सब्जेक्ट वाइज, यानी हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी बोलते हैं.
अच्छा, सब्जेक्ट
हमारे पद को
जी.
हाँ, तो 6 पद कायम के सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स, इंग्लिश, मराठी, साइंस, ऐसे. तो किसी किसी लोगों की तबादला हुआ. और जैसे कि नासिक डिस्ट्रिक्ट, BMC मुंबई में, इधर ये रिसोर्स पर्सन का पद नहीं था.
नहीं था.
तो हमारे समय जो एक्सेस हुए ना, उनका तबादला वहाँ किया गया. और ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी कि साधन व्यक्ति पद है, ये पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गया.
पूरे महाराष्ट्र. हाँ, पहले पूरे महाराष्ट्र में नहीं था.
पूरे महाराष्ट्र में नहीं था. किसी किसी जिले में ये पद भर्ती नहीं
की. कब से हुआ पूरे महाराष्ट्र में?
2013 से.
ऑल ओवर महाराष्ट्र
लगातार है
जी.
तो अभी हर ब्लॉक में केवल 6 सब्जेक्ट पर.
ये जो स्कूल है भोयेपाड़ा, ये आप कौन से साल में ज्वाइन किया आपने?
नहीं, हम ज्वाइन नहीं.
हाँ,
करते.
हाँ, रिसोर्स पर्सन हो.
हम कैसे करते हैं, हम तपास नहीं करते इसकी.
अच्छा, तपास नहीं. हाँ, सुपरविजन
करते
जी. जी.
तो कैसे हमारे सर ब्लॉक में, हम अभी वसई ब्लॉक में हम 4 एक्सपर्ट है.
हाँ,
सब्जेक्ट एक्सपर्ट
जी.
और वसई ब्लॉक में 13 क्लस्टर है. तो हमें 3-3 क्लस्टर दिए. जैसे मेरे पास ये दहीसर क्लस्टर है, विरार क्लस्टर है, और खानेवड़े क्लस्टर है. तो एज अ केंद्र प्रमुख और मैं साथ में ही हम स्कूल विजिट करते हैं.
अच्छा.
और जो भी हमारे कुछ बेनिफिट्स रहते हैं स्कूल को, वो हम उससे में एक्सप्लेन करते हैं.
तो आपका जॉब प्रोफाइल यही है कि स्कूल विजिट करना है, सब ठीक चल रहा है.
हाँ, सब ठीक. और गाइड करना,
टीचर को गाइड करना कि कैसे पढ़ाना है, क्या है, वो आपका प्रोफाइल है.
और MPSP के थ्रू महाराष्ट्र शासन के जो भी प्रोग्राम रहते हैं, जैसे KPLP है, शाळा भैया विद्यार्थी है, अभी विद्या प्रवेश चल रहा है, FLN, ये जो भी है ना, ये पहले हम कंडक्ट करते हैं. स्टेट लेवल पे इसका ट्रेनिंग
लेते हैं,
फिर क्लस्टर पर केंद्र प्रमुख को देते हैं, या फिर क्लस्टर में आके सब टीचर को हम देते हैं.
अच्छा.
ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग देना, ये हमारा
आपका प्रोफाइल है.
प्रोफाइल है
जी, हैज अ ट्रेनर. ओके. तो हाँ, मुझे पूछना था कि ये जो केपीएलपी प्रोग्राम था ये क्या था और क्यों किया गया था?
एक केपीएलपी कैसा प्रोग्राम है, केंद्र प्रमुख है जो पद है इनको सक्षम करने के लिए, क्योंकि कैसे अभी तक हम जस्ट लगातार देख रहे थे कि केवल केपी आते हैं सुपरविजन करते हैं या उसका कुछ काम, लेकिन केपीएलपी के माध्यम से उनको भी कुछ नया सीखना को मिला, यानी कि वो खुद भी डेवलप हुए और उनकी वजह से क्लस्टर भी डेवलप हुआ। अभी ये जो हमारे साथ में केपी है ना, ये तो नेशनल लेवल तक भी जा चुके हैं केपीएलपी के अंदर, रिसर्च भी उन्होंने किया था, यानी कि और इनका और हमारा बॉन्डिंग ऐसा है कि हमारा केंद्र केपीएलके के बारे में दहिसर क्लस्टर इज अ बेस्ट वर्क
जी। और
केपीएलपी में इनको कैसा रहा था, हम कंडक्ट जिले से स्टेट से कंडक्ट करते थे मीटिंग, इनका ऑर्गेनाइजर मैं खुद एज अ रिसोर्स पर्सन करके ब्लॉक में करते थे, सब केपी आते थे और केपीएलके के जो टीम रहती थी सीके टीम थी,
सीके
वो टीम आती थी, इनसे बातें करती थी और स्कूल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं ये इनको समझाते थे और वही गाइडलाइन हम स्कूल में देते थे और उसी के हिसाब से स्कूल में डेवलप हुआ।
ओके, तो कौन से साल में केपीएलपी शुरू हुआ था?
केपीएलपी शायद मुझे लगता है 2018 से शुरू हुआ,
16 ठीक है।
कैसा था सर वो, हमारे पालघर जिले में प्रायोगिक तत्व पर था दो ही ब्लॉक में, पालघर और वसई। तो पालघर में से दो केपी पहले थे इसमें ज्वाइन और वसई में से दो थे, फिर उनका डेवलप अच्छा हुआ तो सब
एक्सपांड किया,
एक्सपांड किया गया ऑल जिले में, यानी कि पूरे 8 ब्लॉक में केपीएलपी होने लगा और ब्लॉक रिसर्च पे जैसे हम मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ वैसे प्रत्येक ब्लॉक में हर एक कंडक्ट उनका बनाया गया कि वो कंडक्ट करेंगे केपीएलपी।
ओके, तो केपीएलपी जो प्रोग्राम था इसकी ट्रेनिंग आपको भी पहले मिला था?
नहीं, ट्रेनिंग नहीं मिला था, केवल हम जो जिला हमें नियोजन देता है ना वो हम ब्लॉक में इनको बताते हैं कि आज केपीएलपी का मीटिंग है
आपको अभी करना है,
मीटिंग कंडक्ट करना हमारा काम।
ठीक है, अच्छा मीटिंग कंडक्ट करना आपका काम है, बिल्कुल। तो इस केपीएलपी प्रोग्राम में क्या क्या मॉड्यूल्स है थोड़ा कुछ बता सकते हैं आप? पता
है कैसा था उनमें, हम यानी कि मेरे पास जब केपीएलपी आया कंडक्ट करने के लिए तो पहले ही ने ना ये जो बच्चों की छोटा छोटा बुक्स रहते हैं
बुक्स होता है,
तो कैसे बच्चे पढ़ते हैं बुक्स, लेकिन बुक्स में से ओरिजिनल क्या पढ़ना है ये उनको पता नहीं रहता, जैसे कि मल्लपृष्ठ मुखपृष्ठ या जो राइटर है उसने क्या बताया है, ये पहले केपी लोगों से रिसर्च किया गया, यानी कि उनको पढ़ाया कि बुक को किस किन बातों से देखना चाहिए। तो पहले उनसे ये सब प्रैक्टिकल करवा के लिया
जी,
शायद 2-3 महीने किया, फिर बुक्स पढ़ के बच्चों क्या कर सके, जैसे छोटी छोटी कविता थी तो पहले केपी लोगों को पढ़ाया गया कि शायद मानो 2-10 लाइन का पैराग्राफ है तो उसमें से हम सारांश निकल के उसका सार कैसे बता सकते हैं ये बताया गया, और केपी ने भी उन्होंने अच्छा सहयोग दिया, लेकिन जब स्कूल लेवल पे केपीएलपी प्रोग्राम रन हुआ ना तो बच्चों को बहुत मजा आया उसमें, बच्चे खुद छोटा छोटा बुक लिखने लगे
खुद से
अच्छा। अपने
ओन
वर्ड से कविता लिखने लगे, और हमारे वसई ब्लॉक में ना सर पारोल केंद्र था,
पारोल
केंद्र में चांदीप स्कूल है, उनमें एक शुभांगी ठाकुर नाम की टीचर है, उन्होंने तो इतना अच्छा ये किया था ना कि उन्होंने अपने पूरे स्कूल के मैदान में इसका बॉन्डिंग किया और कार्यक्रम रखा था और यूनिसेफ के लोग वहाँ आए थे।
अच्छा,
सेम एज क्लस्टर बोलिंग्स वहाँ पर मुक्काम पड़ा स्कूल है, उनमें संगीता जादव करके टीचर है,
अच्छा।
उन्होंने भी सेम तो उन्होंने बच्चों ने इतना सर किया था ना, अगर आज भी हम उस स्कूल में जाएंगे ना तो हमारे बच्चों की खुद की लिखी किताब छोटी छोटी वो दिखाई देगी
जी।
नहीं बस
केपीएलपी में आपका भूमिका क्या था, आपका रोल क्या था उस प्रोग्राम में?
भूमिका केवल सर
मीटिंग कंडक्ट करना ना, ओके,
और प्रोसीडिंग लिखना।
तो ये जो केपीएलपी था ये प्रोग्राम में क्या क्या समस्या आए आपके हिसाब से?
समस्या कैसे है, पहले कैसा था सर, अभी एज अ केपी वो कैसा है, इतना एजुकेशन में मिक्स नहीं होते क्योंकि कैसा उनका काम केवल फील्ड पर विजिटिंग रहे, तो जब केपीएलपी प्रोग्राम आया ना तो उनको खुद को पहले पढ़ने को मिला
यानी कि उनको सीखने में
वो बच्चों की भूमिका में गए।
अच्छा,
उन्होंने खुद पहले प्रैक्टिकल किया, बाद में वही प्रैक्टिकल उन्होंने टीचर को
किया, मतलब पहले उन्होंने सीखा फिर उन्होंने टीचर को सिखाया। ठीक है,
ओ और केपीएलपी का एक उनको यही बेनिफिट हुआ कि डाटा एनालिसिस करना उनको आसान लगा,
डाटा एनालिसिस,
क्योंकि अब पहले कैसे थे हर स्कूल में से वो जानकारी लेते थे, लेकिन केपीएलपी में एक डाटा एनालिसिस
मॉडल था, जी था,
मॉडल था। तो हमारे साथ मानो इतनी समस्या है तो इन समस्या को हम कैसे करेंगे, तो ग्राफ के माध्यम से डाला गया और किस किस समस्या को ज्यादा वेटेज देना चाहिए ये उनको उसमें से पता चला,
पता चला।
या हर स्कूल मानो केपी एक क्लस्टर में मानो 10 स्कूल है, तो हर 10 स्कूल तो बराबर नहीं है, कोई एक्टिविटी में ज्यादा है, कोई बच्चों की गुणवत्ता में ज्यादा है। तो केपीएलपी के माध्यम से जब उन्होंने स्कूल से डाटा शुरू किया ना लेना, तो एनालिसिस किया गया कि हमें ज्यादा ध्यान किन स्कूल को,
किन स्कूल पर देना है,
ये ज्यादा बेनिफिट हुआ केपीएलपी के माध्यम से। और अभी इसी वजह से अभी डाटा एनालिसिस हम भी रिसोर्स पर्सन भी हमें वो आसान लगता है कि डाटा एनालिसिस की हमें पता चलता है कि अरे नहीं हमें ज्यादा ध्यान फोकस किस पे,
फोकस कौन से टॉपिक पे,
किधर देना है। जो ऑल ऊपर है टॉप है उनको ज्यादा वेटेज नहीं दिया चलेगा, लेकिन जो बॉटम में
जी
वो इनकी एक अच्छी भूमिका मॉडल था, भूमिका अच्छी।
इसमें एक और मॉडल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
हाँ, क्लासरूम पहले कैसे रहता था, एक ढांचा था कि आज हम ये पढ़ेंगे, इसके ये उद्दिष्ट है, ऐसा ढांचा था पाठ लेसन का।
हाँ।
लेकिन केपीएलपी के माध्यम से कैसा पता चला, यानी कि क्या अच्छा लगा कि पहले पाठ ऑब्जर्व करते ना, तो पाठ में हम पहले देखते कि आज बच्चों को इससे क्या सीखने को
मिला,
क्या कैसे सीखना है। या पहले कैसे रहता था, टीचर खुद बताते थे चलो आज हम ये पढ़ेंगे, ये पाठ हम पढ़ने वाले, लेकिन इसके मॉडल से कैसे पहले हम बच्चों से उनका पूर्व ज्ञान क्या है ये
पहले
निकाल
का,
लेते थे
जी।
और उसी ढांचे के साथ हम पाठ का ऑब्जर्वेशन करते थे कि उन्होंने ज्ञान दिया, आकलन, उपयोजन और मूल्यमापन, इन चार बेस से अभी टीचर पढ़ाते हैं।
आप भी मतलब क्लासरूम विजिट के लिए जाते हो ना, तो इम्पोर्टेंट चीजें बताइए ना, क्या आप देखते हो वहाँ पर?
सबसे पहले तो सर गुणवत्ता।
हाँ।
गुणवत्ता कैसा, अभी जो चल रहा है ना
अध्ययन स्तर,
यानी कि अध्ययन स्तर से हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पर है। तो अगर हम लैंग्वेज का अध्ययन स्तर देखते हैं तो इसमें पहले आता है अक्षरगत, बाद में शब्दगत, वाक्य, परिच्छेद और स्व अभिव्यक्ति। तो हम क्या देखते हैं, बॉटम में क्या है, यानी कि अक्षर स्तर पर कौन से बच्चे और परिच्छेद पर कौन से, इन दोनों को ही हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि जो बॉटम में उनको जो अक्षर पे उनको शब्द मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये एज अ रिसोर्स पर्सन करके हम तय करते हैं। और जो स्व अभिव्यक्ति है, क्योंकि कैसा है सर, जब भी ये प्रश्न निर्मित करते हैं ना अध्ययन स्तर पर, तो ज्यादातर ना स्व अभिव्यक्ति में बच्चे छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते हैं, कैसे हम बोलते हैं, मानो समझो उनको एक टॉपिक दिया का मेरा स्कूल,
मेरा
स्कूल के बारे में आप क्या क्या बोलेंगे, तो बच्चे अगर ऐसे छोटे छोटे
आइडिया आता है
तो बच्चे बोलने लगते हैं उसको, स्वाभाविक ये इसमें से अच्छा लगा।
आप लोग टीचर्स को फीडबैक भी देते होंगे?
हाँ।
वो
शेरा देते हैं।
हाँ, शेरा, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना।
शेरे में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो एक कॉमन ढांचा है कि पट कितना है, आज की उपस्थिति कितनी, और जो रनिंग में प्रोग्राम चल रहे उसका सब फाइलिंग इनका हम देखते हैं, मानो किधर वो कम है तो नोट डाउन करते हैं और उनको सूचना देते कि फिर से 7 दिन में हम
आएंगे, आपको
आपको
कंटिन्यू कर रखना है अच्छे से।
और कभी कभी कैसा रहता है कि प्रोग्राम बहुत आते हैं, कोई टीचर नहीं समझ पाते, तो फिर से हमें समझा कर उनको बताना पड़ता है।
जब आप आदिवासी एरियाज में जाते हैं,
हाँ,
वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
हमारे कैसा है, वसई ब्लॉक थोड़ा शहरी है, थोड़ा ग्रामीण है,
ग्रामीन,
अगर हम खाने उड़े पारोल भाटा में जाएंगे ना, तो उधर आदिवासी, तो वो पेरेंट्स ना सर ज्यादा बात नहीं करते, यानी कि डरते
हो होता,
तो एज अ रीजन। लेकिन इसका बेनिफिट हमें सर विद्या प्रवेश में अच्छा हुआ, और FLN विद्या प्रवेश में कैसा, 2 साल कोविड में गया, तो अभी जो पहले में आने वाले बच्चे थे उन्होंने कभी स्कूल देखा नहीं थे, यानी कि पहली दूसरी जिनका कोविड में गया वो 3rd स्टैंडर्ड में अभी है, और इनका बेनिफिट हमें अभी FLN में मिल रहा है। FLN का बेनिफिट कैसा है कि माताओं को बच्चों को पढ़ाना है
जी।
तो सबसे पहले FLN के बारे में मैं बोलती हूँ आपसे, बाद में विद्या प्रवेश बोलती हूँ। एफएलएन कैसा है कि फर्स्ट टू टेंथ स्टैंडर्ड निपुण भारत के अंदर हमें फर्स्ट टू थ्री स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने उनको 2026 तक हमें जो हमारा मैथ्स है उनकी चार क्रिया बेरिज वजाबा की गुणाकर भागाकर इनको हमें करना ही
ट्रेन करना है पूरा
ट्रेन
बच्चों
करना
को
है यानी कि उनको वो आना ही चाहिए
और
अगर हम लैंग्वेज का लेके तो पढ़ना और लिखना उनको आना ये उनका एम है
गोल
है मुख्य बेसिक है। तो एफएलएन के अंदर हम ऐसा प्रोग्राम का तालुका स्तर पर कर रहे हैं कि पहली से तीसरी तक बच्चे जो है ना उनको इकट्ठा करके उनके माताओं का गढ़ बनाए हैं।
अच्छा
जैसे ये भोए पाड़ा है तो भोए पाड़े में समझो चार पाड़े आते हैं तो हर पाड़े वाइज पहली से तीसरी के बच्चे कितने हैं उनका एक गढ़ बनाए और उन गढ़ में समझो मानो 10 बच्चे 5 लोगों का गढ़ है मानो 5 माताएं इकट्ठा है तो उस 5 माताओं से एक माताओं को हमने लीडर माता बनाया जो पढ़ी लिखी है उन सब माताओं में या जो मोबाइल यूज कर सकती है किसी किसी लेकिन आदिवासी पाड़ा में ये नहीं है तो क्या कर रहे हैं हमने क्या करा है कृति पत्रिका बनाया है मोबाइल यूज करना नहीं आता ना आदिवासी क्षेत्र में तो उस जो पढ़ी लिखी माता है ना उसको हम कृति पत्रिका देते हैं ऐसा
पेपर में लिख
कर देते और उनको बता दे कि आपको बच्चों को शनिवार या रविवार इकट्ठा करना है और उन सबका कृति करके लेना है तो इसका हमें सर ना बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है यानी कि पिछले ही हफ्ते में इसी स्कूल में टीम आके गई राज्य स्तर पर से और इनके इधर के पेरेंट्स ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया
अच्छा
तो टीम भी बहुत खुश हुई यानी कि माता खुद समझने लगे कि हमें बच्चों से क्या करवा के लेना है और विद्या प्रवेश का मैंने बोला ना सर तो विद्या प्रवेश के माध्यम से आज आप किसी भी स्कूल में पहली के बच्चे देखेंगे ना तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं क्योंकि जो मन का डर था ना
वो खत्म हो गया
हाँ क्योंकि विद्या प्रवेश में कैसा बच्चा आया उसके लिए कुछ एक्टिविटी रखी थी
खेलने के लिए
तो उनको मजा लगा कि हाँ चलो फन लर्निंग है लेकिन फन है तो आज मैं हक से बोल सकती हूँ कि आज हमारे पहली से बच्चे चौथी से बच्चे से भी आगे है बोलने यानी कि जो मन का डर था ना
वो
विद्या प्रवेश की वजह से खत्म हो गया।
ऐसा देखा जाए तो कोविड के पहले आप आपका एक हफ्ते का शेड्यूल बताइए ना कैसे काम करते थे आप कोविड के पहले
कैसा रहता था सर हमारा सोमवार है ना वो बीआरसी का वार रहता है यानी कि सोमवार को हमें ऑफिस
में जाना होता है
कंपलसरी वो ऑफिस डे है तो ऑफिस में जाकर हम जो कुछ हमारे सब्जेक्ट है जैसे मेरे पास ना सर डाइट के मूल्यमापन सीपीडी और आईटी ये तीन सब्जेक्ट मेरे पास है बाकी सब्जेक्ट पर्सन के पास अलग सब्जेक्ट तो हमारे सब्जेक्ट पर हम एनालिसिस करते हैं कि हमें हफ्ते भर में मेरे सब्जेक्ट के बारे में क्या करना है और हमारा नियोजन रहता है यानी कि वो हमारे तालुका में से ही दिया है कि हर डे को हमें दोनों स्कूल विजिट करना रहता है
एक दिन में
दो स्कूल विजिट करना है ज्यादा भी लेकिन दो तो करना ही है
कंपलसरी दो
करना है तो हम सोमवार को जाकर हम सैटरडे हमको छुट्टी रहते हैं
जी
ऑल सैटरडे तो ट्यूजडे से लेकर फ्राइडे तक का हम नियोजन करते हैं
एक शेड्यूल बना लेते हैं
अगर उस शेड्यूल में कुछ
चेंजेस
हुआ तो ठीक है वरना जो हमारे और हमें दो स्कूल करके शाम को बीओ को रिपोर्ट देना पड़ता है
कि आपने क्या स्कूल में देखा क्या फीडबैक दिया कैसा टीचर का रोल था
जो हम शेरा देते हैं ना स्कूल में उसका एक कॉपी हम लेते हैं और वो कॉपी हमें
बीओ को देना होता
है फिर एक हफ्ता कंप्लीट हो जाने के बाद अभी कोविड के आगे हम लिख कर देते थे
लिख के देखते थे
यानी कि हमारा हफ्ते का अहवाल हमने क्या क्या किया लेकिन अभी जो हमारे बीए है बीओ है वो भी टेक्नोलॉजी भी है तो उन्होंने हमें एक आइडिया दिए कि हफ्ते भर में जो आप स्कूल विजिट करेंगे ना उनका एक पीपीटी बना
पीपीटी बिल्कुल
तो इसमें स्कूल भी आता है हमने क्या किया
वो भी आ जाता है
तो हम पीपीटी के माध्यम से उन्हें फीडबैक देते कि हफ्ते भर में हमने
इतना ऐसा ऐसा काम किया
है।
और कोविड के बाद जैसे देखा जाए तो कोविड में हर किसी को बहुत तकलीफ हुआ सब स्कूल्स बनता आपको क्या क्या समस्या आई एज अ रिसोर्स पर्सन
सच बताऊं तो हम इतने टेक्नोस में भी नहीं थे लेकिन कोविड की वजह से हम टेक्नोस में भी बन गए क्योंकि कैसे घर से निकल नहीं पाते थे ऑफिस आना बंद था तो सबसे पहले मैं मेरा बता दूं सर मैंने पहले जूम ऐप कैसा यूज करने ये सीखा यानी कि गूगल मीट है बहुत परेशानी आई लोग कंडक्ट नहीं होते थे लेकिन कैसा जो हमारा काम है वो करते और मुझे सर अच्छा है कि मैंने कोविड काल में हमारे वसई स्कूल वसई ब्लॉक में ना 10th स्टैंडर्ड की जेडपी स्कूल है 1 to 10 तो मेरे अच्छा लगता है पढ़ाना बच्चों को तो मैंने जूम के ऐप से 10वीं के बच्चों के लेक्चर लिए और सब बच्चे शामिल नहीं होते थे लेकिन
जो होते थे
जो होता था यानी कि कैसा जो बेनिफिट नहीं दे पाए ना तो बच्चों को बेनिफिट दिया जूम ऐप के माध्यम से हिंदी पढ़ाकर
आपको ऐसा लगा कि कोई कोई प्रॉब्लम ऐसे हुई कोविड में जो आप हैंडल नहीं कर पाए?
नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हुई थोड़ी सी तकलीफ, हाँ। लेकिन कैसे जितना हो सके
जी, आपने अपना 100% दिया।
100% देने का, 100% तो नहीं बोलूंगी सर, हाँ। लेकिन जितना बन सका उतना दिया, लेकिन परेशानी तो बहुत रही क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं थी, क्योंकि सब लोगों को तो यूज, यानी कि जैसा कोविड था,
हाँ।
सब लोग भी डर में थे और इतना क्या बोलते हैं उसको,
फेस टू फेस नहीं होता था, सोशल डिस्टेंसिंग
बता रहे हैं, कितने लोग जॉइनिंग है लेकिन कितना सुन रहे हैं ये भी नहीं पता चलता था, लेकिन जितना हो सके उतना किया।
आप रिसोर्स पर्सन हो, आपके ऊपर कौन से अधिकारी होते
हैं? मेरे ऊपर तालुका ब्लॉक में गट्टा समन्वयक रहते हैं।
अच्छा,
पूरे ब्लॉक का,
पूरे ब्लॉक के
बीआरसी का है गट्टा समन्वयक, और उसके ऊपर भी हो गट्टा शिक्षण अधिकारी, बाद में जिले में शिक्षण अधिकारी या डायट के प्राचार्य।
तो आपके जो ऊपर जो है सुपरवाइजर, आपके जो पर्सन, उनसे आपके रिलेशंस कैसे?
बहुत अच्छे, क्योंकि सर मैंने कि मैं खुद का बता रही हूँ ऐसे नहीं बोलूँ, लेकिन मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है।
जी बिल्कुल।
तो अगर तालुका का कोई भी प्रोग्राम रहता है तो सूत्र संचालन मैं ही करती हूँ, मुझे वो पसंद है
जी।
और मैं एक बताऊंगी सर, यानी कि मेरे लिए और शान की बात है, ये जो गोष्ठी का शनिवार उपक्रम आया था ना, तो पूरे ब्लॉक में हमारा वसई तालुका टॉप पर
टॉप पे था,
और कोविड कालावधि में ही गोष्ठी का शनिवार चल रहा था। तो कैसा था, ब्लॉक में से हमें मोबाइल पर वो गोष्ठी का शनिवार की स्टोरी आती थी। हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड के ऑल ब्लॉक के टीचर, तो फर्स्ट से लेकर सेवन ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए
जी, व्हाट्सएप ग्रुप,
फर्स्ट स्टैंडर्ड का अलग, सेकंड का अलग, फर्स्ट एंड सेकंड, थ्री एंड फोर्थ, फाइव एंड सिक्स, ऐसे बनाए थे, और हम स्टोरी भेजते थे, और बच्चों का भी बहुत अच्छा रिप्लाई था गोष्ठी के शनिवार को।
तो जब कोविड के टाइम पर टीचर से कैसा बनता था आपका बातचीत करना है तो
कैसे सर?
हाँ,
टीचर से कैसे छूम के अब से ही हम उनसे जुड़े रहते हैं।
अभी आया?
हाँ अभी आया, दो मिनट मग बोलते हो अपन सरंशी बोलते हैं।
हाँ, तो टीचर से कैसे जूम ऐप से?
जूम ऐप से ही बोलते रहे, क्योंकि दूसरा
हाँ कुछ नहीं था,
ऑफलाइन चल रहा था।
हाँ,
लेकिन कैसा इतना नहीं, क्योंकि 21 मार्च से लॉकडाउन हुआ
जी,
और सब
पहला तीन महीना पूरा बंद था। फिर
नहीं सर, हम 26 मई को हम ज्वाइन हुए।
अच्छा,
हमें ऑफिस को जाना ही पड़ता था
सेकेंड मंथ में ही।
हाँ, 21 मार्च से अप्रैल तक ही, 26 मई को
अच्छा
हम ज्वाइनिंग हुए ऑफिस।
हाँ,
तो कैसा था ऑफिस में, एक दिन हमारी ड्यूटी थी।
अच्छा, अल्टरनेट डेज,
अल्टरनेट डेज
जी जी।
तो मैं तो सर पालघर में रहती हूँ।
हाँ,
तो हम एज अ मेरे हस्बैंड मुझे लेके आते
ड्राइव करके,
अच्छे करके, और मेरी वजह से वो भी, उनको भी रुकना पड़ा।
हाँ, वो होता है
क्योंकि कैसा ऑफिस बंद नहीं,
बंद नहीं कर सकते,
और जो कुछ जानकारी देनी पड़ती थी वो तो ब्लॉक में देनी ही पड़ती थी। तो ऐसा हमारा शेड्यूल, स्कूल बंद थे लेकिन हमारा शेड्यूल चल ही रहा था। फिर जून में तो हम शुरू ही हुए, ट्रेन का फैसिलिटी हो गया तो हमें जाना ही पड़ता था।
आपका और केपी का रिलेशन कैसा?
बहुत बॉन्डिंग है, यानी कि मेरे पास थ्री कस्टर है, विरार, दहिसर और खानीवड़े। तो मैडम के पास ही विरार और दहिसर है।
अच्छा।
तो मुझे भी सीखने को अच्छा लगता है और मैडम भी बहुत हेल्पफुल है, मैडम खुद बहुत यानी कि खूब पॉजिटिव है,
पॉजिटिव वर्क
गुणवत्ता के बारे में। तो टीचर मैडम का और मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। हमारे ब्लॉक में भी ऐसा बोला जाता है कि इनकी जोड़ी वो भी अगर स्कूल विजिट जाते हैं तो हम दोनों साथ में रहते,
साथ में रहते,
क्योंकि उनका भी होता है, उनसे भी मुझे बहुत कुछ
सीखने मिलता है जी,
हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है
जी। केपीएलपी के अलावा और कोई प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर कोविड के टाइम पे? कोई प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर ऑनलाइन टीचर्स लोग के करिकुलम,
ऑनलाइन शिक्षण चल रहा था जी, और शाला बाह्य वो चल रहा था सर।
हाँ,
शाला बाह्य शाला कैसा था, और रेडियो पर ना सर प्रोग्राम आते थे।
अच्छा।
हाँ, तो शाला बाह्य शाला का वो सब्जेक्ट भी मेरे पास है।
अच्छा,
मैंने कंडक्ट किया था। तो वो प्रोग्राम आता था गुरुवार और शनिवार को रहता था।
हाँ,
तो स्कूल को मैं इन्फॉर्मेशन करती थी कि आज गुरु, यानी कि कल गुरुवार है ना, तो बुधवार को मैं इन्फॉर्मेशन देती थी, और गांव में किसी के पास अगर रेडियो हो तो रेडियो पर ही वो प्रोग्राम आता था। लेकिन उसका भी अच्छा रिप्लाई
क्या था उस प्रोग्राम के बारे में, क्या सिखाया?
टिली मिली कार्यक्रम आता था उसका, बच्चों के बारे में कि आकाशवाणी के बारे में बच्चों को छोटे छोटे सब्जेक्ट पे पढ़ाया जाता था, या बच्चों को खुद आकाशवाणी पर जाने की संधि थी उस प्रोग्राम। हमारे वसई तालुक में से तो कोई नहीं गया, लेकिन डहानू की एक बच्ची थी।
अच्छा।
हाँ, स्कूल का नाम तो नहीं पता, आंद्रे मैडम थी वो। उनकी बच्ची का खुद का इंटरव्यू हुआ था रेडियो पर, और जो रेडियो के स्मितिन सर थे उनका बॉन्डिंग टीचर लोगों से बहुत अच्छा है। तो शाला भैया शाला मतलब कैसा, अभी स्कूल बंद है तो बच्चों को शिक्षण तो देना चाहिए, तो कैसे करते थे रेडियो पर प्रोग्राम रहता था ना सैटरडे को सुबह 9 बजे, तो जितने बच्चे रहेंगे वो बच्चे किसी के एक आदमी के ऐसे स्कूल के बाग पर बैठते थे और वो प्रोग्राम सुनते थे।
अच्छा, इसके थ्रू
एजुकेशन पर ही डिपेंड था वो प्रोग्राम।
कोविड के टाइम पे जैसे स्कूल्स तो सब बंद था, तो टीचर्स लोग को ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रोग्राम था?
ऑनलाइन ही ट्रेनिंग,
ऑनलाइन ही था जी।
सर हमारे ना पालघर जिले में इसी कोविड की कालावधि में प्रश्न निर्मित कार्यशाला हमने यानी कि जिले से
कंडक्ट
लॉन्च की, उसका भी हेड में ही थी। उसमें कैसा था, पूरे जिले में से, मैं ब्लॉक का ही बोलती हूँ सर, पूरे ब्लॉक में से ना सर सब्जेक्ट वाइज जो अच्छे टीचर है उनका हमने एक ग्रुप
तैयार किया,
और हर टीचर को ना एक सब्जेक्ट बांट के दिया था। मानो कि सर किसी का मराठी अच्छा है तो मराठी पर पहली से लेकर आठवीं तक प्रश्न पत्रिका कंडक्ट करेंगे, जिसका बेस क्या बोलते हैं उसको, प्रश्न निर्मित अध्ययन निश्चिति पर,
अच्छा
लर्निंग आउटकम,
लर्निंग आउटकम
ये उसका बेस था। तो ऐसे मान लगातार हमने शायद 500 से ऊपर प्रश्न पत्रिका निकाली है। डावरे सर आप जानते होंगे, जिला में जिला समन्वयक है डाइट में, वो उसका एक पुस्तक प्रकाशित होने वाला है।
अच्छा,
और हर एक बुकलेट हर एक स्कूल को मिलने वाला है।
हाँ,
उसका तो अच्छा था, एक एक्सपीरियंस भी अच्छा था, और वो सब कोविड के कालावधि में था, अच्छा एक्सपीरियंस था वो।
केपीएलपी प्रोग्राम को आपको रेट करना है 1 से 5 के बीच में। 1 मीन्स अनसक्सेसफुल, 2 मीन्स पार्टली सक्सेसफुल, 3 मीन्स सक्सेसफुल हुआ था, 4 मतलब अच्छा हुआ था, फिर मतलब एकदम अच्छा
नहीं,
हुआ था,
एकदम अच्छा
1 to 5 के अंदर
एकदम अच्छा, यानी कि केपी के केपीएलपी से मैं खुद सीखी डाटा एनालिसिस करना, और जिसका बेनिफिट बहुत अच्छा है कि वक्त कम लगता है और डाटा एनालिसिस की वजह से ना समस्या तुरंत सामने आती है, तो उस पर काम करना अच्छा रहता है। मैं तो 5% ही दूंगी, अच्छा बेस्ट, केपीएलपी इज द बेस्ट।
तो आपके हिसाब से केपीएलपी में और क्या नया प्रोग्राम लाना चाहिए? आप एज अ रिसोर्स पर्सन हो, आप स्कूल में जाते हो, समस्या देखते हो, तो कुछ नई चीज़ें लाना चाहिए डाटा एनालिसिस के अलावा जो हेल्पफुल हो सके सबको।
मुझे ऐसा लगता है ना सर कि कैसा है स्कूल में अभी टीचर्स बहुत कम है, तो लेकिन एक तालुका स्तर पर केपीएलपी के माध्यम से अगर हम अभ्यासगढ़ जैसे बोलते हैं, कि अगर हम केपीएल के माध्यम से जो टीचर ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनका अगर अभ्यासगढ़ बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभ्यासगढ़ के माध्यम से कैसे, ये तो डेली रूटीन चलता ही रहता है, लेकिन ये जो पीडी है ना बहुत एक्सपेंसिव है, तो उनके लिए अभ्यासगढ़ के माध्यम से अच्छा काम हो सकता है कि वो बच्चों को क्या देना चाहिए इस पीडी को, उस पर शायद वो काम करेंगे।
पीडी,
हाँ पीडी मतलब बच्चों,
हाँ
बच्चों को क्या और सिखाना है,
और सिखाना चाहिए,
बुक तो है लेकिन
उसके अलावा
क्रिएटिविटी,
हाँ
ये ऐसे रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कैसा है, शासन की तरफ से अगर कोई प्रोग्राम आता है ना तो उसको देखने का नजरिया अलग
होता है।
अगर हम खुद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कुछ लाते हैं तो कैसा उसको बेनिफिट नहीं रहता, लेकिन शासन की तरफ से अगर प्रोग्राम आता है ना तो टीचर लोग ज्यादा कंफर्टेबली वो लेते हैं।
अच्छा, संस्था के कोई संस्था यहाँ पर आई थी कोई प्रोग्राम कंडक्ट करने या किसी
ने कभी? संस्था नहीं है, एनजीओ।
हाँ वही एनजीओ। हाँ, कौन सा प्रोग्राम वो आप बता सकते हैं थोड़ा?
अभी सर ये आदर्श शाला करके मॉडल है
जी,
पूरे जिले में से शायद हर ब्लॉक में से एक आदर्श शाला चुनी गई है।
हाँ।
तो हमारे दहिसर क्लस्टर में कनेर स्कूल है,
कनेर स्कूल,
तो उससे मुत्ता फाउंडेशन, शांतिलाल मुत्ता फाउंडेशन,
अच्छा।
ये कार्यरत है, कोटक महिंद्रा ये उनकी वजह से उन्होंने एक टीचर दिया है, लैब दी है, कंप्यूटर लैब।
अच्छा, कंप्यूटर लैब।
हाँ, उन्होंने, तो स्कूल को कंप्यूटर का बेनिफिट है, और वो जो टीचर है कोटक महिंद्रा के, वो उन्हें अंग्रेजी कैसे बोलना है, हमारे टीचर सिखाते हैं, लेकिन जो फोनिक्स है उन पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि परफेक्ट इंग्लिश कैसे बोलना है।
अच्छा,
यानी कि ये बेनिफिट है बच्चों को। तो ऐसे बहुत एनजीओ है जैसे कि केपीएलपी में सीके संस्था थी, उनसे भी बेनिफिट हुआ
जी। एज अ रिसोर्स पर्सन, आपके आपका जॉब प्रोफाइल तो लाइक स्कूल विजिट करना है, वो सब करना है, कुछ और चीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए इसमें ऐड करने के लिए?
हमें ऐसा लगता है सर, हम विजिट करना, मुझे एज अ टीचर मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा है।
अच्छा,
तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे जॉब चार्ट में ऐसा डाला जाए कि नहीं, इतना दिन आपको पढ़ाना ही है,
दो दिन तो पढ़ाना है, बाकी दिन आपको विजिट करना है एज अ रिसोर्स पर्सन।
सर अगर हम पढ़ाते नहीं ना तो टच में नहीं रहते।
हाँ, वो लिंक चले जाता है,
चला जाता है। तो जैसे हमारे ब्लॉक में 10th स्टैंडर्ड के स्कूल है, तो अगर उन स्कूल में हमें पढ़ाया दिया तो अच्छा लगेगा।
अच्छा लगेगा जी।
और मैं आपको फ्रेंकली बताती हूँ सर, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है
जी जी।
अगर हमें फाइनलाइज किया जाता तो अच्छा, क्योंकि कैसे सर, कॉन्ट्रैक्ट को देखने का नजरिया टीचर का अलग
होता है, वो होता
है। ये हमें क्या
पढ़ाना है, जी जी, होता है सर,
क्वालिटी है
हाँ, पर सामने वाला समझता नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से
जी। और 16 साल हुए हम कॉन्ट्रैक्ट पर ही चल रहे हैं।
हाँ, वो होता है, वो सरकार का क्या बोले,
लेकिन अच्छा है जो है।
हाँ,
अच्छा है, तो हम 100% देने का प्रयास करते हैं।
आपके हिसाब से आपके पोजीशन में क्या कुछ चीजें वो आपको लगता है कि हमारे प्रोफाइल में नहीं होनी चाहिए?
कैसा है सर, हमारा जॉब चार्ट यानी कि जब एज अ रिसोर्स पर्सन हमने ज्वाइन किया तो हमें ऐसा लगा था कि जो मेरा हिंदी सब्जेक्ट है उसमें जाकर मुझे कुछ करना है
आगे जाकर जी,
कि मेरे सब्जेक्ट में मुझे बेनिफिट एक्सपर्ट होना है।
हाँ,
लेकिन ये ऐसा नहीं है। अच्छा, हमको स्कूल विजिट है, कॉलेज विजिट है, यानी कि ये हमारा जॉब चार्ट नहीं है। हमारा जॉब चार्ट का बेस था गुणवत्ता, बच्चों को गुणवत्ता देना, यानी कि टीचिंग।
आपके हिसाब से प्रोफाइल, परफेक्ट प्रोफाइल क्या होना चाहिए एज अ रिसोर्स पर्सन?
रिसोर्स पर्सन का परफेक्ट प्रोफाइल ही होना चाहिए कि हम कुछ,
जैसे आपने कहा दो दिन टीचिंग,
हाँ, टीचिंग ही होना चाहिए ऐसे, टीचिंग या जो बुक्स है, बुक्स पर हम काम कर सके
जी, मतलब करिकुलम बदलने के लिए, अच्छा, उसमें
या जो ऐसे ही
लेसन प्लान करने
चल रहे हैं, हाँ, या कुछ नया लेसन,
कुछ नया अपडेट करना
है,
अच्छा,
ऐसा होना चाहिए
जी।
लेकिन टीचिंग तो होना ही चाहिए।
हाँ, टीचिंग होना चाहिए।
या कुछ मॉड्यूल तैयार करना।
हाँ, मॉड्यूल, नया चैप्टर
तैयार करना।
मास्टर फैसिलिटेटर से आपके वो कैसे थे रिलेशन?
मतलब
मास्टर फैसिलिटेटर भी एक होते हैं ना, वो जैसे विजय रावल करके।
ओके ओके, नहीं बहुत अच्छे, क्योंकि कैसे रहता है हमारा बॉन्डिंग उनसे ही आता है।
हां हां, वही मैं पूछ रहा
हूं, जिले पर काम करते हैं। तो जैसे डावरे, अभी केपीएलपी में रावल,
रावल
विजय रावल थे, वो रावल सर और हमारा बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो खुद भी ज्यादा एक्सपेंसिव
जी,
बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो पहले हमसे ताल्लुक करते हैं कि आज हमें
यहाँ जाना है।
हाँ, जैसे वो प्रोग्राम रेगुलर, और आज तक वैसे में जितने प्रोग्राम हुए हम साथ में ही है।
अच्छा,
क्योंकि जो प्रोग्राम रहता है उधर हमें रहना ही रहता है, क्योंकि मेरा जो केपीएलपी का प्रोसीडिंग है मुझे वो लिखना पड़ता है।
अच्छा,
कि आज केपीएलपी के माध्यम से कहाँ पर क्या हुआ,
कहाँ पर क्या हुआ है, पूरा
जो ट्रेनिंग चलते है हर क्लस्टर में, तो और हम और केपी साथ में ही रहते हैं,
साथ में रहते हैं जी। आपको लगता है ये जो केपीएलपी प्रोग्राम है इसको और ब्लॉक्स में स्प्रेड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए?
सर, करना चाहिए, क्योंकि कैसे है देखो, अभी हमारे क्लस्टर में जो शैला सर और स्वाति पागदर मैडम है, अभी इनका जब काम हम देखते हैं ना, तो दूसरे केपी के अलावा बहुत अच्छा है
जी,
क्योंकि उन्होंने वो केपीएलपी को समझा है।
हाँ,
ऐसा यानी जब भी कुछ काम रहते हैं तो ये अग्रसर रहते हैं काम में, और मतलब उनका जो डाटा रहता है ना वो परफेक्ट रहता है।
अच्छा, वो एकदम।
हाँ, और जब हम इन कभी कभार मैडम नहीं साथ रहती, मैं अकेली रहती हूँ, तो उन्होंने जो बताया है ना वो हमें स्कूल में भी देखने को मिलता है सर, केपीएलपी के माध्यम से। अगर हम बोलेंगे ना केपीएल के हिसाब से चलो लेसन ले लो, तो टीचरों में हमें देखने को मिलता है।
तो एज अ ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, आप केपी के साथ रहते हो, केपी को गाइड करते हो, है ना?
हाँ,
तो आपके हिसाब से केपी को इम्प्रूवमेंट लाने और क्या करना चाहिए?
उन पर जो ज़्यादा काम है ना वो कम करना चाहिए।
अच्छा,
और कैसे सर, अभी ये तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि भर्ती ही नहीं है,
भर्ती नहीं
तो अभी
है।
मैडम के पास तीन तीन क्लस्टर है।
अच्छा,
अगर हर केपी के पास खुद का एक ही क्लस्टर है तो वो ज़्यादा वक्त दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन कैसे कभी कभार इनका भी मतलब
परेशान हो जाते हैं जी,
होना चाहिए।
अच्छा, ट्रेनिंग इनका
भी इनका होना चाहिए।
आपके हिसाब से क्या नई चीज़ें इनके प्रोफाइल में ऐड करना चाहिए केपी के नई चीज़?
मुझे ऐसा लगता है कि हर एक क्लस्टर में सर एक ऐसा मॉडल स्कूल होना चाहिए कि जिनसे इंस्पायर होके और अलग स्कूल को ही अच्छा बन सके।
अच्छा,
यानी कि मॉडल स्कूल होना चाहिए या केपीओं को भी कुछ रिसर्च या मॉडल हर अपने केंद्र के लिए अलग होना चाहिए कि मेरे मन का क्लस्टर ऐसा कुछ होना चाहिए कि मेरा क्लस्टर कैसा है।
अच्छा।
या आरा खड़ा उनसे लेना चाहिए, या मानो अभी अप्रैल में खत्म हो जाएगा ये, तो अगले साल में मेरा क्लस्टर में मैं क्या करने वाली
हूं,
उनसे आरा खड़ा लेना चाहिए।
अच्छा, आपने भी कहा ना मॉडल स्कूल, तो आपके हिसाब से एक मॉडल स्कूल में क्या क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए?
सबसे पहले मॉडल स्कूल में सर गुणवत्ता होनी चाहिए
जी,
जो टीचर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए
जी।
सबसे पहले तो उनको देखकर अलग टीचर इंस्पायर हो, ऐसा उनमें कुछ खूबी होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे ना सर वसई ब्लॉक में तो कैसा है, पेरेंट्स का नजरिया प्राइवेट स्कूल में ज्यादा है
सर,
क्योंकि कैसे स्कूल के अंदर क्या है ना, ये पेरेंट्स नहीं देखते, लेकिन जो दिखावा है यानी कि बिल्डिंग कल्चर,
बिल्डिंग
सराउंडिंग
आसपास,
आसपास, तो हमारे झेड़पी में भी होना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं बोलती कि झेड़पी में नहीं है,
है,
लेकिन थोड़ा सा वो वॉश करने की जरूरत है, जैसे डिसिप्लिन। अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा कैसा बंठन के जाता है, तो हमारे बच्चे सामान्य घर के, लेकिन भले हम उनके जैसा नहीं कर सके, लेकिन जो हमारे स्कूल में उनको अच्छा रखने का काम हमें करना चाहिए। हमारे झेड़पी में क्वालिटी बहुत है, लेकिन कैसा थोड़ी सी धीमी गति आई है, तो उनको सुधारना चाहिए टीचर लोगों को
जी। एज अ रिसोर्स पर्सन हमें क्या चीज़ करनी चाहिए जो इम्प्रूवमेंट के लिए
रिसोर्स पर्सन?
हाँ,
सबसे पहले तो हमारा नॉलेज बढ़ाना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, धूप आ रहा होगा आपको,
हमें हमारा जो एजुकेशन है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कैसा है ट्रेनिंग से जो रहते हैं ना स्टेट लेवल के, कभी कभार कैसा होता है हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसी के लिए है, लेकिन कभी कभी वो संधि हमें नहीं मिलती, टीचर लोगों को भेजा जाता है स्टेट लेवल पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर मंथ या सिक्स मंथ एज अ हमारा ट्रेनिंग होना ही चाहिए।
अच्छा,
कि अभी ऐसा ऐसा हुआ है लेकिन आगे हमें क्या करना है, तो इनके बारे में ट्रेनिंग होने चाहिए।
अच्छा, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज रखनी चाहिए?
ट्रेनिंग में तो क्वालिटी या हम क्या और
नए कर सकते हैं,
नया कर सकते हैं जिससे गुणवत्ता बढ़े,
गुणवत्ता बढ़े। हमारे रिसर्च को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि हमें वो पढ़नी चाहिए,
यानी कि मुझे
मुझे मुझे हम लोग को पढ़नी चाहिए? हाँ
जी, नहीं कैसा है जो हमारा जॉब चार्ट बनाया है ना सर, तो उसमें और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि सब्जेक्ट वैसर को शायद ये 10 पॉइंट्स दिए हैं।
अच्छा,
तो उन्हें और डेवलप करने के लिए क्या करना है ये आपको समझ लेना चाहिए, ऐसा मेरा मत है
जी।
या ये 6 सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, तो उनके लिए हम और क्या मॉडल ला सकते हैं,
क्या मॉडल ला सकते हैं
वो सोच सकते
हैं इम्प्रूवमेंट के लिए,
इम्प्रूवमेंट के लिए
जी। ये स्कूल में कितने स्टूडेंट्स है?
104।
और कितना स्टैंडर्ड क्लब है? पहली से
चौथी।
और कितने टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ पर?
तीन
टीचर, पहली से चौथी तीन टीचर। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए।